एक सवाल खासा दिलचस्प है। बिस्मिल्लाह की बे की वजाहत करते हैं। शायद यहां किसी नशिस्त में मैंने एक गुजारिश की थी कि अगर जरा सा हम गौर करें तो कुरान पाक में एक चीज हमें दिखाई देती है। कुरान पाक मुश्तमिल है 30 सिपारों पर और पहले सिपारे की इब्तदा अलिफ लाम मीम से होती है और 30वें सिपारे का इख्तिताम अन्नास पर होता है। अलिफ लाम मीम से लफ्ज नास तक कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है 30 सिपारे। कुरान पाक को अगर हम देखते हैं उन 30 सिपारों के बाहर पहला सफा उस पर सूरह फातिहा होती है। अगर हम अपने जिस्म को देखें तो शोल्डर से पांव की टो तक हमारा जिस्म इंटेग्रेटेड है, एक ही टुकड़ा है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने टांगे, बाजू, पांव, कंधे, पसलियां वगैरह गढ़ दी हैं वहां। लेकिन सर जिस्म के ऊपर है और सर का ताल्लुक जिस्म के साथ गर्दन के जरिए है। वो गर्दन भी इसलिए है कि सर जिस्म पर कायम रहे और सर के अंदर जो चीज अल्लाह ने महफूज की है हमारे कासाए सर के अंदर उसका ताल्लुक जिस्म के साथ रहे, तो उसे कंट्रोल करता रहे ब्रेन। सर हमारे जिस्म का हिस्सा है लेकिन फिर भी जिस्म का हिस्सा नहीं है कि जिस्म हमारा पांव से लेके कंधों तक आके खत्म होता है, उसके बाद अलहदा से सर दिखाई देता है। बिल्कुल इसी तरह सूरह फातिहा कुरान पाक का हिस्सा है और कुरान पाक से बाहर भी है। जैसे मैंने अर्ज किया कि कुरान पाक तो नाम है 30 सिपारों का और सूरह फातिहा उसके साथ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे जिस्म के साथ सर है। अगर हमारे कासाए सर के अंदर जो कुछ महफूज है वो कहीं डैमेज हो जाए तो हमारा पूरा जिस्म मफलूज हो जाता है, हमारी मूवमेंट्स, हमारे रिएक्शंस, हमारी इनटेक्स सब की सब डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसी तरह सूरह फातिहा कुरान पाक का दिमाग है। जैसे सूरह यासीन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सूरह यासीन कुरान का धड़कता हुआ दिल है, इसी तरह सूरह फातिहा कुरान पाक का दिमाग है। दिमाग इस तरह से कि सूरह फातिहा में पूरा कुरान पाक समोया है। सूरह फातिहा को अगर हम किसी वक्त बैठ के एग्जामिन कर लें तो ये आधी सूरा हम्द सना है या रब की तारीफ है या रब का मकाम है और बकाया आधी सूरत दुआ है। अगर हम सूरह फातिहा की तलावत करें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्द तो तारीफ है, रब्बुल आलमीन तमाम आलमों का रब है, ये रब को डिफाइन किया है खुद रब ने अपने बारे में। मालिक यौमिद्दीन, रब ने अपने आप को डिफाइन किया। तो कुरान पाक क्या है कि रब अपने आप को डिफाइन कर रहा है, बता रहा है कि मैं क्या हूं, तुम्हारा मालिक हूं, तुम्हारा खालिक हूं, तुम्हारा रब हूं। ये उसने अपने आप को मुतारफ कराया इंसान के साथ और उसके बाद उसने ये बताया कि मैं, मेरे अंदर क्या क्या सिफात हैं, उसमें जमाली भी हैं और जलाली भी हैं। बिल्कुल ऐसा कि अगर कोई बेटा आपका सरकश हो रहा हो तो आप उसको बुला के कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे खून से पैदा हुए हो, मेरा खून हो तुम, मैं बहुत लविंग फादर हूं। लेकिन उसके साथ साथ अगर तुम राह रास्त पर नहीं रहोगे तो मेरे अंदर सख्ती भी बहुत है। तो रब ताला ने अपने आप को पहले तो ये डिफाइन कर दिया कि मैं तुम्हारा खालिक हूं, तुम्हारा रब हूं, तुम्हारा मालिक हूं, तुम्हारा आका हूं। और जिस दिन तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाएगा कि तुम क्या करते रहे हो, उस दिन का भी शहंशाह मैं हूं। और उसके बाद उसने अपने आप को यह बता दिया कि मैं रहीम और करीम भी हूं, मेहरबान हूं, माफ कर देने वाला हूं। लेकिन साथ कहीं जाके उसने ये भी कह दिया, मैं कहार भी हूं और जब्बार भी हूं। तो पूरा कुरान पाक यही कुछ कहता है कि मेरी इताअत करो, मेरे बताए हुए रास्ते पे चल लो, बहुत रहीम और करीम पाओगे, मुझे इनाम देने वाला पाओगे। लेकिन अगर तुम सरकशी पर उतरे तो फिर मैं कहार भी हूं और जब्बार भी हूं। पूरा कुरान पाक इसी से भरा है। कहीं रब ने तरगीब दी है, कहीं तंबीह की है, कहीं इनाम का वादा किया है और कहीं सजा का खौफ दिला दिया है। लेकिन बात वहीं घूमती रहती है कि मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरी इताअत करो। तो सूरह फातिहा में भी रब ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद अपनी सिफात बयान कर दी और उसके बाद दुआ है वो। तो यूं ये जिस्त है कुरान पाक का, उसका अर्क और उस कुरान की असल सूरह फातिहा में है। और सूरह फातिहा की असल हमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उसमें मिल जाती है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो रहीम भी है और रहमान भी है। सूरह फातिहा का पहले हिस्से का जिस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अंदर आ गया और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का जस जो है वो सिर्फ बिस्मिल्लाह में है, अल्लाह के नाम से शुरू किया। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह के नाम से शुरू किया तो हमने मान लिया कि रब तमाम बातें जो कह रहा है उसके नाम से अपना काम शुरू करके हमने तस्लीम कर लिया कि वो वैसे ही है जैसे वो कह रहा है। तो वो जिस्त इसलिए कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह में है। और बिस्मिल्लाह का जिस्त लफ्ज बे में इसलिए कहा जाता है कि अरबी में बे साथ के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर कोई शख्स सिर्फ एक लफ्ज कहता साथ तो बाकी चीजें फिर अंडरस्टूड हो जाएंगी कि किसके साथ, रब ताला के साथ, और फिर वो बाकी अंडरस्टूड है कि रब क्या है। यही वजह है कि हजरत अली करम अल्लाह वजहों ने जब ये फरमाया था कि मैं घोड़े के रकाब में पांव रखने से लेकर घोड़े के ऊपर सवार होने तक पूरा कुरान तलावत कर लेता हूं, तो मुराद हजरत अली करम अल्लाह वजहों की इसी से थी कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर सवार होते थे। तो हजरत अली करम अल्लाह वजहों का फरमान यह था कि पूरा कुरान पाक सूरह फातिहा में समोया है और पूरी सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में समाई है, पूरी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लफ्ज बे में समाई है और बे नुक्ते में समाई है। वो इस वजह से फरमाया था आपने कि रकाब में पांव रखते थे तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हुए सवार हो जाते थे घोड़े पर। तो यूं पूरा कुरान पाक तलावत करने का आपने फरमा दिया, उससे मुराद ये थी। ये बे के नीचे नुक्ता है जिसके बारे में कहा जाता है कि बे उस नुक्ते में समाई है। जब ये कहते हैं कि ये बे नुक्ते में समाई है तो लफ्ज नुक्ता की बात होती है, नुक्ता की नहीं होती। नुक्ता एक डॉट है और नुक्ता अक्ल की बात है। महावरतन हम कहते हैं कि ये बहुत नुक्ते की बात है, वो छोटे काफ से इस्तेमाल होता है लफ्ज, और जो डॉट है वो नुक्ता है, बड़े काफ के साथ आता है। तो जब हम ये कहते हैं कि बे नुक्ते में सुनाई है तो छोटे काफ के साथ नुक्ता है, नून काफ ते हे। उससे मुराद हमारी नून बड़ा काफ तोए और हे नहीं होता। तो बेअकल में समाई है, फरासत में समाई है। आप वापस उस गुफ्तगू पर चल जाइए जो शुरू के दिनों में यहां हो रही थी कि अल्लाह जिस पर मेहरबान होता है, जिससे राजी होता है, उसे दीन की समझ अता फरमा देता है और जिसे दीन की समझ अता फरमाता है उसे इल्म अता कर देता है, क्योंकि बगैर इल्म के दीन समझा नहीं जा सकता, और जिसको इल्म अता होता है उसे अकल अता हो जाती है, और एसेंस ऑफ विजडम खुद रब है। तो नुक्ता जो छोटे काफ के साथ है वो बमायनी अकल के इस्तेमाल होता है, गहराई के मायनों में आ जाएगा कि इस बात में बहुत गहराई है कि नुक्ते की बात है। तो यूं ये कहा जाता है कि बे नुक्ते में समाई है कि अक्ल फहम इससे आती है, और यही वजह है कि कुरान पाक की तमाम सूरतों के असरात इंसानी जिंदगी पर मरतब होती हैं, और हर सूरत के असरात मुख्तलिफ मरतब होते हैं इंसानी जिस्म पर। एक सूरा कुरान पाक की ऐसी है जिसका किताबों में शायद ही कहीं जिक्र आया हो बतौर वजीफे के, या जिसकी फजीलत हमारे यहां उलेमा हजरात ने जो किताबें लिखी उनमें शायद ही किसी किताब में उस सूरा का जिक्र हो, कम से कम मेरी इल्म की हद तक नहीं है कि किसी ने उसको बयान किया हो। वह है सूरा तकाबुन। हम लोगों से जो मेरी तरह के गुनहगार दुनियादार लोग हैं, हमसे नाफरमानी होती रहती है अल्लाह ताला की, हमसे सगीरा और कबीरा गुनाह होते रहते हैं, अक्सर औकात वो नादानिस्ता होते हैं, हम लाइल्मी में गुनाह कर डालते हैं, बाज़ औकात वो दानिस्ता भी होते हैं, कुछ प्लैंड मिस्टेक्स हम करते हैं, कुछ इनोसेंट मिस्टेक्स करते हैं। जब इंसान तौबा करता है और चाहता है कि मैं अपनी कोताहियों के असरात से बाहर निकल जाऊं, या जहां इंसान को यह खदशा होता है कि रब ताला मुझे झटका दे रहा है मेरे करतूतों की वजह से, तो जो शख्स सूरह तगावन पढ़ता है हर रोज ईशा के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर से वो असरात खत्म हो जाते हैं। तो ये मैं मिसाल एक दे रहा था कि इस तरह से हर सूरह के मुख्तलिफ असरात मरतब होते हैं इंसान के जिस्म और जहन पर। ये और बात है कि मैन टू मैन वेरी कर जाएंगे वो असरात, इसलिए कि हम में से हर एक की बॉडी केमिस्ट्री मुख्तलिफ है। फिर 24 घंटों के अंदर मुख्तलिफ साहतें आती हैं, तो किस वक्त पर पढ़ी गई उसके असरात तब्दील हो जाएंगे इंसान पर। कुछ लोगों की याददाश्त खराब होती है, उन्हें चीजें याद नहीं रहती। मैं अपनी जैसे बुढ़े खोसट लोगों की बात नहीं करता, वो इस उम्र में तो जाके वैसे ही बंदा हर काम से ही रह जाता है, लेकिन नौजवान हैं उनकी याददाश्त कमजोर होती है। तो मैं हैरान हुआ कि दुआ में सजेशन जो आती है वो ऑफ कोर्स मैन टू मैन वेरी कर जाती है, नो डाउट, लेकिन ज्यादातर सूरह आले इमरान, सूरह यूसुफ और सूरह इनाम, इनके हिफ्ज करने की एडवाइस आती है। अब वो मैन टू मैन वेरी कर रहा होता है कि कुछ किसी के लिए सूरह आले इमरान आ गई, किसी के लिए सूरह यूसुफ आ गई, किसी के लिए सूरह इनाम आ गई, लेकिन ये याददाश्त पर बड़ा अच्छा असर मरतब करती हैं, मेमोरी बड़ी तेज हो जाती है इंसान की। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमजोर लोग होते हैं, जैसे मैं हूं, जरा सी बात से आप जरा ऊंचा आवाज में बोलेंगे मेरी टांगे थर थर कांपने लगेंगी, कॉन्फिडेंस नहीं होता इंसान में। तो मैंने ये पाया कि लोगों ने सूरह ताहा पढ़ी और उनके अंदर से वो डर और खौफ इंसानों का निकल गया। तो इस तरह ये सूरतें हैं, अगर बोलना शुरू हुए तो पूरा दिन गुजर जाएगा कि किस सूरत के क्या असरात आएंगे हम पर। तो हर सूरत के असरात हम पे अलहदा मरतब होती हैं। सूरह फातिहा के असरात मल्टीपल हैं, उसकी वजह यह है कि ये कुरान पाक का जिस्त है। सूरह फातिहा दुश्मनों के बचाव के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगी। सूरह फातिहा इंसान अगर तौबा कर रहा है तो अल्लाह के हजूर उसकी तौबा जल्दी कबूल होती है और इंसान दोबारा वो गुनाह नहीं करता अगर इसे पढ़ के तौबा कर रहा है, अल्लाह से माफी मांग रहा है। नशा छुड़वाने में ही काम आ जाती है। अगर एक शख्स किसी किस्म के नशे में मुब्तला है, इल्म के नशे के अलावा, तो नशे से जान छूट जाएगी। बीमारियों की शिफा वो तो आम इसके बारे में हर एक को मालूम है कि बीमारी की शिफा जान छूट जाती है इससे। बहुत सी खवातीन के काम ये आ जाती है अपने खान को काबू में करने के लिए, लेकिन अफसोस ये है कि मर्दों के काम नहीं आती है। तो इसी तरह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बारे में, जिसके अंदर पूरी सूरह फातिहा समाई है, एक अल्लाह के वली थे, उनके साथ मेरा खासा कुर्बत का ताल्लुक रहा जिंदगी में, इंतकाल कर चुके, दुनिया से चले गए हैं। किसी जमाने में मुझे ये बहुत शौक था कि मैं मुअक्कल देखूं ये कैसा होता है। उस वक्त तक ये कुछ चीजें मुझे हासिल हुई नहीं थी, तो एक शौक था। मैंने उनसे लिबर्टी ले ली ये सोच के कि वो मुझे अपना बेटा कहते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप कोई मुअक्कल तो मुझे अता फरमा दें। तो उन्होंने एक लफ्ज मुझे बताया कि ये पढ़ा करो। बाद में मुझ पर वो बात खुली कि वो लफ्ज असल में एक मुअक्कल का नाम भी है, और ये वो मुअक्कल है जो जनाब हजरत पीरान पीर गौसल आजम दस्तगीर साहब के पास होता था, और यही लफ्ज जनाब हजरत पीरान पीर गौसल आजम दस्तगीर साहब पढ़ा करते थे। तो मैंने वो लफ्ज पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने एक तरीका बताया था कि ईशा की नमाज के बाद पढ़ना तुम। तो ये वो जमाना था जब मैं सुन्नत के तौर पे, सुन्नत समझ के मैं जमीन पे सोता था। तो उन्होंने पढ़ा, गलबन अभी शायद 4 या 5 बार ही पढ़ा था, तो एक खास किस्म की स्मेल आनी शुरू हुई मुझे, और सडनली वो मुअक्कल मेरे साथ आके खड़ा हो गया। अब काम तो मुझे कोई लेना नहीं था, तो हुआ ये कि मैं उसको देखता रहा और वो मुझे देखता रहा, न मैं कुछ बोला ना वो बोला। मेरा ख्याल है थोड़ी देर में उसने ये सोचा होगा कि बहुत बेवकूफ आदमी है, बुला के देखे जा रहा मुझे, तो वो साहब वापस चल दिए। दूसरी रात भी ये मैंने हरकत कर डाली, वो चस्का लगा हुआ था। तीसरी रात हरकत की, यही हुआ। चौथी रात से मैं बुलाता रहा, नहीं आया वो। तो 2-3 महीने के बाद फिर मैं पाकपुर शरीफ गया, तो रास्ते में, उन दिनों मुल्तान रोड खराब थी तो मैं वाया फैसलाबाद जाया करता था, तो रास्ते में उनका गांव आ गया, उन साहब का, तो उनके पास चला गया मैं। तो बातें करते करते मुझे ख्याल आया, तो मैंने कहा मुअक्कल आया नहीं पढ़ने के बावजूद, तो कहेंगे हो नहीं सकता। तो फरमाया क्या बिल्कुल नहीं आया? मैंने कहा नहीं जी, पहले 3 दिन आया था, फिर 4th दिन नहीं आया। कहेंगे अच्छा मैं देखता हूं। तो वो कुछ आंखें बंद करके पढ़ते रहे, थोड़ी देर के बाद कहने लगे कि आपने कोई वजीफा शुरू किया नया? तो मैंने कहा जी। क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा साहब ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का वजीफा शुरू किया था मैंने उन दिनों। कहने आप भी कमाल करते हैं, हाथ में 2 धारी तलवार लिए बैठे हैं और कहते हैं मुअक्कल आपके करीब आ जाए, उसकी क्या मजाल है कि मुअक्कल आपके करीब फटक जाए अगर आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं तो। कहने का मकसद ये है कि मुअक्कल जो पढ़ाई की वजह से पैदा होते हैं, जिनकी गिजा ही ये अल्फाज हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अंदर इतना जलाल है कि कोई मुअक्कल करीब नहीं आता इंसान के, इससे खौफजदा होते हैं, भाग जाते हैं। ये 2-धारी तलवार है। इसके पढ़ने से इंसान के अंदर जो कुवतें बेदार हो जाती हैं, रब ताला जो कुवतें अता फरमा देता है, वो भी हैरान कुन है। इसके बारे में इंशाल्लाह अगली इतवार बात करेंगे।